તારીખ 17/8/1998 શ્રી સમયસર ગાથા 19 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું આગ્રામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 46
ज्ञान दशा के और वेद ज्ञान की चर्चा चली है। सभी अधिकार में वेदियां का विषय को चला है और वेद ज्ञान के बिना स्वानुभूति यानी मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता नहीं। इसलिए मुमुक्षु को वेद ज्ञान का प्रयोग तक पहुंचना चाहिए। वेद ज्ञान करना चाहिए ऐसा बौद्धिक स्तर पे तो प्राय सभी को समझ में आता है कि वेद ज्ञान करना चाहिए और इसके लिए समय सारा जो ग्रंथों का स्वाध्याय पठन आदि होता है। फिर भी वेद ज्ञान होता है या नहीं होता है वो एक व्यक्तिगत विषय रह जाता है। कुछ महाभाग्य जीव को वेद ज्ञान होता होगा जबकि स्वाध्याय हजारों लोग करते हैं। वेद ज्ञान करना चाहिए ऐसा समझ में आने पर भी वेद ज्ञान नहीं होता है इसका क्या कारण है इसकी जांच तलाश अपने आप में करनी चाहिए। इस गाथा में इसी विषय पर आचार्य महाराज ने प्रकाश डाला है और ये विषय हमारे लिए प्रयोजनभूत होने से स्वाध्याय में इसको चुना गया है। आगमों में सर्वज्ञ परमात्मा के स्वरूप की भी बात आएगी, निग्रंथ महामुनियों की भी चर्चा आएगी, कैसे होते हैं इसका स्वरूप की भी बात आएगी, ज्ञानियों की भी बात आएगी और मुमुक्षुओं को भी की बात आएगी। मुमुक्षु को अपनी भूमिका का विषय तत्काल प्रयोजन है और बाकी जो ऊपर ऊपर की भूमिका ज्ञानी की मुनि की सर्वज्ञ की होती है ये भावना का विषय बनता है। क्या भावना का विषय बनना चाहिए और इसके स्वरूप समझने में हमें गलती नहीं हो इस दृष्टिकोण भी उसे हमें रहना चाहिए। तो यहाँ पर मुमुक्षु की भूमिका का विषय है। गाथा के पूर्व ही टीकाकार आचार्य महाराज ने प्रश्न उठाया है जिसका उत्तर उस गाथा है। प्रश्न वो है कि यहाँ पुनः पूछते हैं कि यह आत्मा कितने समय तक अप्रतिबुद्ध रहता है वह कहो। उसके उत्तर रूप गाथा सूत्र कहते हैं जो पूर्व आचार्य कुंदकुंद आचार्य हैं उनका जो गाथा सूत्र है वो उत्तर रूप है। टीकाकार महाराज ने प्रश्न क्या उठाया कि ये जो संसार में परिभ्रमण कर रही है ऐसे आत्मा कहाँ तक अज्ञानी रहेगा ये बताओ। उसमें हमारा प्रयोजन क्या आया कि अगर हम स्वलक्ष्य से स्वाध्याय करते हैं तो हमको ये बात लागू हो जाएगी कि ये आचार्य महाराज हमारे लिए कह रहे हैं कि हम कहाँ तक अज्ञानी रहेंगे। इसका उत्तर हमें कौन कौन आचार्य देव दे रहे हैं कि हम कहाँ तक अज्ञानी रहेंगे। स्वाध्याय की पद्धति होती है, स्वाध्याय का नियम होता है कि स्वलक्ष्य से ही स्वाध्याय करें। स्वलक्ष्य से माने कि अपना प्रयोजन कहाँ है उसका दृष्टिकोण साध्य रखते हुए हमें स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि यह बात प्रसिद्ध है कि परलक्ष्य से किया हुआ अंग पूर्व का स्वाध्याय सत्संग निष्फल होता है। स्वलक्ष्य इस भूमिका का सद्गुण है और परलक्ष्य है इन मुमुक्षु की भूमिका का बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा दोष है। क्रोध मान माया लोभ आदि जो चारित्र गुणों के परिणाम है प्रकृतिगत, ये तो सबके नजर में आते हैं क्योंकि बहुत स्थूल है। श्रद्धा के भी कितने स्थूल परिणाम तो नजर में आते हैं कि कोई कुदेव को मानते हैं नहीं मानना चाहिए, कुछ शास्त्र को मानते हैं, कुछ गुरु को मानते हैं वो नहीं मानना चाहिए, और नव तत्व के भी विपरीत श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। परंतु ज्ञान का जो दोष है उसमें भी एक परलक्ष्य वाला दोष है जो तो बहुत बड़ा दोष है, वो तो जल्दी से नजर में नहीं आता। भले ही हम कोई किसी व्यक्ति का विचार नहीं करें स्वाध्याय के दौरान, सत्संग के दौरान, भले ही हम किसी अन्य व्यक्ति के लक्ष्य में नहीं लें, फिर भी परलक्ष्य बना रहता है अगर स्वलक्ष्य नहीं रहा तो। एक ऐसा दोष है जो जल्दी से नजर में नहीं आता, परंतु ये परलक्ष्य वाला दोष जीवन भर के स्वाध्याय और सत्संग को खा जाता है। क्या होता है? खा जाता है। जैसे अज्ञानी जीव बहुत तपस्या करता है, एक एक महीना का उपवास करेगा, छह छह महीने का उपवास भी करने वाला होगा, लेकिन अज्ञान रूपी भैंसा, भैंसा में भी जो नर होता है ना हमारे गुजराती में पाड़ा कहता है, पाड़ा कहता है आपके यहाँ हिंदी में, थोड़ा तगड़ा होता है जो मेल भैंसा होता है वो सब खा जाता है। अज्ञान रूपी पाड़ा सभी क्रियाओं को खा जाता है, जैसे वैसे परलक्ष्य रूपी पाड़ा सभी शास्त्र के जानकारी स्वाध्याय अंग पूर्व का ज्ञान क्षोभ ज्ञान सत्संग सबको खा जाता है। इसकी चर्चा इसलिए की कि ये गाथा में हमें अपने आप को शामिल करके स्वाध्याय करना है। किस तरह शामिल किया जाता है उसकी चर्चा विस्तार से करेंगे इसी घंटे में।
कहाँ कहाँ कैसे करते रहता
है? हाँ ठीक है, प्रश्न वो है कि जीव का परलक्ष्य कैसे कैसे कहाँ कहाँ बना रहता है। स्वलक्ष्य के अभाव में परलक्ष्य होना सामान्य बात है, उसमें दूसरों की नजर में हमारा दिखाव ठीक रहे, भले ही हम धार्मिक क्षेत्र में हो तो इस क्षेत्र में इस माहौल में इन लोगों के बीच में हमारा दिखाव सबसे अच्छा होना चाहिए, ऐसा अभिप्राय रहता है। उसको लोग सामना भी कहते हैं और परलक्ष्य कहते हैं। इसमें भी इस गद्दी पे बैठने वाले को जोखिम ज्यादा है, सुनने वाले को उतना नहीं है, इसलिए हमारे पैर के नीचे पानी आता है, वो बात हम पहले करेंगे। क्यों कि एक तो आप लोग हमको ऊंचे आसन पर बिठाते हो, आप लोग नीचे नीचे का आसन ग्रहण करते हो, तो वैसे ही एक आसन का कैर का सीट का भी अगर परलक्ष्य होता है तो अहम होना स्वाभाविक हो जाता है। दूसरी बात कि ऊंचे आसन पर बैठने वाले को सभी देखते हैं, उनकी समानता इस गद्दी पर बैठने वाले को रहा करती है, तो हमको तो सब देखते हैं एक ही साथ, जबकि हम एक साथ सबको नहीं देख सकते हैं। हमको सब एक साथ देख सकते हैं तो इनकी समानता होने से, इसका भान होने से, हाँ ये सबों की नजरों में हमारा दिखाव अच्छा से अच्छा होना चाहिए। हमारी भाषा, हमारी आवाज, आवाज की मिठास, हमारा वक्तृत्व, सभी तरह से हम कैसे अच्छे दिखे और सुनने वाली समाज पर हमारी अच्छी इंप्रेशन जमी रहे, जमती जाए, ऐसे परलक्ष्य वक्ता को हो जाता है। ठीक है, पर वो उसका स्वाध्याय को खा जाता है। किसको खा जाता है? उसके शास्त्र ज्ञान को और इसके स्वाध्याय को वो खा जाता है। अब बात रही सुनने वाले की, तो सुनने वाले भी ऊपर ऊपर से जो सुनते हैं अपने आप को शामिल नहीं करते, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, तो ये बात रह जाती है थर्ड पर्सन की, जैसे किसी और की बात चलती हो। ऐसे भाव से स्वाध्याय में बैठना वो भी परलक्ष्य है। और कोई बात किसी मुद्दे पर चलती हो उसमें किसी व्यक्ति विशेष को ख्याल में लेना कि देखो ये बात इसकी आई, ये बात उसके लिए आई, वक्ता को और श्रोता को दोनों को भी ऐसा होना ये परलक्ष्य है। नहीं दिखता है इसलिए तो जरा जोर से चर्चा कर रहे हैं, विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि एक ऐसा छिपा हुआ बड़ा दुश्मन है जो नजर में तो नहीं आता लेकिन नुकसानी पूरी पूरी करता है, अधूरी नहीं करता, इसलिए इसकी चर्चा विस्तार से कर रहे हैं कि हमें एक नियम बना लेना चाहिए। जैसे एक सामान्य नियम अभी क्या है कि सत्संग चल रहा है, शास्त्र स्वाध्याय चल रहा है, हमें दूसरी बातें नहीं करनी चाहिए। एक सूचना देनी पड़ती है कि दूसरी बातें बंद करो, नहीं करनी चाहिए, ये हमारे लिए शर्मजनक बात है। कहीं ऐसा बोलना पड़ता है कि यहाँ धूम्रपान करना मना है, फिर भी अगर किसी ने कर लिया और बोलना पड़ा तो कितनी क्षमजनक बात हो जाएगी। हाँ, फिर बोतल बोल के बोतल की तो बात आती, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे एक शिस्त होता है, एक डिसिप्लिन होता है कि जब स्वाध्याय होता है तो हमें दूसरी बात तो नहीं करनी चाहिए, दूसरे और हमारा उपयोग भी नहीं लगना चाहिए। और वो कब होगा कि स्व लक्ष्य से स्वाध्याय होगा तब, वरना हम शास्त्र जी का और शास्त्रकर्ता आचार्य का ए भी नहीं करते हैं। गुरु और शास्त्र का अभिनय हो गया, देवगुरु शास्त्र का अभिनय होने से दर्शन में वृद्धिगत होता हो जाता है। तो ये परलक्ष्य से स्वाध्याय करने वालों का दर्शन बढ़ेगा स्वाध्याय करते करते भी, जबकि शास्त्र में दर्शन में बढ़ाने का निमित्तत्व है ही नहीं। जैसे तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में किसी को भी नुकसान होने का निमित्तत्व नहीं होने पर भी ऋषभदेव भगवान की वाणी खिरी तो 363 अन्य मत पैदा हो गए, इसका निमित्तत्व वहां नहीं था पर है भी नहीं, फिर भी ऐसा बन जाता है उपादान की अयोग्यता के वशात, वैसे हमारा कहीं नहीं हो जाए। इसलिए ईश्वर लक्ष्य के परलक्ष्य की चर्चा की है। बहुत मुद्दे हैं इस विषय पर, बहुत लंबा करने जाएंगे विषयांतर हो जाएगा, संक्षेप में बता दिया कि पूरे स्वाध्याय को खा जाएगा ये परलक्ष्य। इसलिए यहाँ जो प्रश्न उठा है वो हमारे लिए उठा है कि हम कहीं सालों से ये प्रवृत्ति धार्मिक साधन की कर रहे हैं, हम कब तक अज्ञानी रहेंगे, ये प्रश्न हमारे में उठा नहीं हो तो उठा करके इस गाथा का स्वाध्याय करना चाहिए। इसलिए थोड़ी संक्षेप में इस विषय की चर्चा कर ली है। बहुत बड़ा प्रकरण है और किसी को थोड़ा बहुत देखना है तो ये सुविधि में, सुविधि का जो आर्टिकल है तत्मानुशीलन में, उसमें थोड़ी बहुत चर्चा की है, देख लेना। गाथा इस प्रकार है, कमें लोकम में ही यो अहम ही अहम यदि अहमपन चल कम रूपम जा ऐसा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो भवति ताव। लोकर्म कर्मजु मैं अरु मैं कर्म जो कर्म में है न कर्म है, ये बुद्धि जब तक जी के अज्ञान तब तक हो रहे। क्या कहते हैं शब्दार्थ पढ़े, जब तक इस आत्मा की ज्ञानावरणादि द्रव कर्म भाव कर्म और शरीर आदि नो कर्म में यह मैं हूं और ये नो कर्म इति नो कर्म मुझ में यह कर्म नो कर्म है ऐसी बुद्धि है, जब तक यह आत्मा अप्रतिबुद्ध माने अज्ञानी है। कर्म तीन प्रकार के हैं, द्रव कर्म भाव कर्म और नो कर्म। भाव कर्म है वो अपने विभाव भाव है, द्रव कर्म है वो प्रारब्ध है। ऐसे परमाणु को छद्मस्थ जीव नहीं देख सकते, कर्म के परमाणु को कारण और वृगणा को नहीं देख सकते, परंतु भाग्य को प्रारब्ध को तो सब जानते हैं और मानते भी हैं और चाहते भी हैं कि हमारा भाग्य अच्छा से अच्छा रहे, हमारा भाग्योदय अच्छा से अच्छा बना रहे। इस द्रव कर्म में अपनत्व की बुद्धि है, मैं हूं ऐसी बुद्धि है, और नौ कर्म में शरीर, कुटुंब, परिवार, पैसे, गहने, जो भी सचेत अचेत संयोग है, सचेत अचेत मिश्र संयोग है, पर अवरु कीर्ति, मान सम्मान अपमान, निंदा प्रशंसा, ये सब नौ कर्म है। क्या लोग क्या समझते हैं कि ये जो पैसे हैं या कोई संपत्ति है वही परिग्रह है, लेकिन सबसे बड़ा परिग्रह तो मान है, वो है मान, मान मैंने आबरू कीर्ति। जितनी हमारी आबरू कीर्ति अच्छी उतने हम अच्छे, दुर्गति में जाने के लिए। देखिए ये लौकिक मान्यताओं से बिल्कुल विरुद्ध बातें चल रही हैं। लौकिक मान्यता में तो हमारी आबरू कीर्ति जितनी अच्छी उतना ही अच्छा, और ज्यादा अच्छी आबरू कीर्ति होती तो हम फूले नहीं समाते, है ना, है ऐसे टाइट होकर के चलेंगे, है रास्ते पे गुजरेंगे तो भी मुख फुला हुआ रहेगा। तो सबसे बड़ा परिग्रह है, और कोई भी अपनी बुराई करता है तो उतना अणगमा लगता है, इतना अणगमा लगता है, हमारे आबरू पर थप्पा लगाता है, याद है, आबरू पर थप्पा लगाता है, तेरे को दुर्गति से बचाने को आया है, तेरा उपकार ही है, दृष्टि बदल करके तो देख तू। लेकिन ये आबरू कीर्ति वाली बात उतनी सामान्य हो गई है कि हमको हमारे परिग्रह के रूप में समझ में भी नहीं आती, और इसका फल जो दुर्गति है वो देखने में भी नहीं आता, कि हम कितने अंधे हैं देख लेना, कि इतनी बड़ी बात हमारी समझ में नहीं आती। ये सबसे बड़ी बात हुआ है, क्यों कि ये जो दूसरे दूसरे नौ कर्म रूप परिग्रह है ना, वो तो सबका टोटल आबरू कीर्ति में आता है, कि उसके पास इतने नौकर है, इसके पास उतनी गाड़ियां हैं, इसके पास उतने मकान हैं, इतने गहने हैं, इतने रत्न है, इतना सुंदर है, इतना वो है, इतना वो है, इतना इनके परिवार में इसके ठेकेदार है, ठेकेदार है, ठेकेदार, ठेकेदार, प्रशंसक, वो सबका जुमला कहाँ आता है, आबरू कीर्ति में आता है। तो ये सबसे बड़ा परिग्रह है, और जीव मूर्छित हो जाता है, क्या हो जाता है, मूर्छित होता है, विशुद्ध होता है, अपने भान को खोलता है। तो ये इसमें अपनापन, मैं अपना अभिप्राय के रूप में रहेगा तब तक जीव ज्ञानी है। बहुत गंभीर विषय है ये, शब्दार्थ भले सरल और सादी बात है लेकिन बात में गंभीरता बहुत है। जैसे कोई जी कोई मनुष्य दान देता है, तुम्हें मेरा 25 लाख रुपया लिख लो, ऐसे तो देता नहीं है लेकिन मानो के दिया, तो मैंने मेरे रुपये दिए, क्या किया, मेरे रुपये दिए, तो रुपये में मेरा पना तो रखा, मेरा पना तो दिया नहीं, रुपया दिया, इसका कोई मतलब नहीं रहा। इसका क्या मतलब?
नहीं देंगे सब
है? मेरे हैं इसलिए क्या क्यों नहीं देंगे? अगर मेरे ही नहीं है तो देने नहीं देने का सवाल नहीं है। सन्मार्ग में अगर इसकी पाई पाई का सदुपयोग होता है तो इससे बड़े हर्ष की बात कौन सी हो सकती है? जिस देव गुरु शास्त्र का उपकार होते ही जीव को संसार के अनंत दुख भोगने नहीं पड़ते और अंततः वो सिद्धालय में निर्वाण पद में 14 लोक का नाश होकर के विराजमान हो जाता है, इनके प्रति सर्वार्पण बुद्धि आए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो जब उपकार अनंता है तो हमारा प्रत्युपकार कोई अनंता है ही नहीं। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो आत्मसिद्धि शास्त्र में गाई है ने कि आपने तो प्रभु हमको आत्मा दे दिया, श्री गुरु को कहते हैं कि आपने क्या दे दिया? हमारा सर्वस्व जो हमारी आत्मा है वो दे दिया। हम आपको क्या दे सकते हैं? हमारे पास देने लिए देने के लिए है भी क्या चीज है? हमारी तो कोई चीज है ही नहीं। फिर भी संयोग कुछ दिखता है, उसका सन्मार्ग में उपयोग होता है तो इससे बड़ा हर्ष हमको कोई होने वाला है ही नहीं। लेकिन जब हमारी आत्मा तो हमारी है तो हम अर्पण कर सकते हैं। दूसरी चीज तो हमारी है ही नहीं, तो हमने अर्पण की वो बात हमने हमको रखनी भी नहीं है। वो तो सन्मार्ग में लगे तो ठीक बात है, बहुत खुशी की बात है। हमारी आत्मा हमारी है तो वो हम अपने आज्ञा में हमको हम समर्पण कर देते हैं कि हम हमको आपसे चरणाधीन होकर रहेंगे। चरण के दो अर्थ होते हैं, पांव को भी चरण कहते हैं और वचन को भी चरण कहते हैं। हम आपके चरण के अधीन रहेंगे, मैंने आपके उपदेश को उल्लंघन नहीं करेंगे। आपका उपदेश, आपका विकल्प, ये हमारे आज्ञा हमारे लिए आज्ञा बन जाएगी और हम उसके अधीन रहेंगे। वर्तुं चरणाधीन, बस आज्ञाकारिता में रहने वाले को अनेक प्रकार के दोष तो उत्पन्न ही नहीं होते। मोक्ष की भूमिका का ये सबसे बड़ा गुण आज्ञा रुचि का होता है। इसलिए सत्पुरुष की सदगुरु की पहचान पूर्वक आज्ञा रुचि उत्पन्न होती है तो उसको श्रीमद जी ने पहला संकेत बोला है। संकेत सम्यक्त्व का वो प्रत्यक्ष कारण देख करके उसको पहला संकेत बोला है। आत्मसिद्धि शास्त्र के 17 गाथा है। स्वच्छंद मत आग्रह जी वरते सदगुरु लक्ष्य संकित तेने भाख्यो कारण गणे प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष सम्यक दर्शन का कारण गिन करके उनको चरणाधीन आज्ञा रुचि में आता है, उनको सम्यक दर्शन और निर्वाण पद मिलने वाला है ही, ऐसा प्रत्यक्ष कारण उन्होंने देखा है। यहां भी जब आचार्य श्री ऐसा कहते हैं कि तुम कहीं भी अपनत्व मत करो, पहले तो अपनापन की बुद्धि को छोड़ो। बुद्धि माने क्या? अभिप्राय, बुद्धि माने अभिप्राय, अपनापन का परिणाम बाद में छूटेगा, अभिप्राय छूटेगा। तो जिसका अभिप्राय में अपनापन रहा तो सर्वसंग परित्याग करके दिगंबरी दीक्षा लेकर के जंगल में चला जाएगा, अज्ञान मिटने वाला नहीं है, अप्रतिबुद्ध रहेगा, अज्ञान मिटने वाला नहीं है, क्योंकि अपनापन की बुद्धि नहीं छोड़ी। परिणामों का विज्ञान ऐसा है, चला गया, परिणामों का विज्ञान ऐसा है कि अभिप्राय पूर्वक योग्यता बनती रहती है, बनी जाती है। यह बात सुगानी जी ने कही द्रवदृष्टि प्रकाश में कि अभिप्राय प्रारंभ से लेकर के भावभाषण तक, पदार्थ निर्णय तक की योजना है, उस सभी स्तर में विभिन्न प्रकार के स्टेज वाइज गलत अभिप्राय की फेरबदली होती है, गलत अभिप्राय कहीं मंद होता है और आगे जाकर करके बदल जाता है। इसी को ही कहते हैं यथार्थ मुमुक्षुता। यथार्थ मुमुक्षुता वो ज्ञान दशा का कारण बनती है। कोई मंदिर जाने से या शास्त्र पढ़ने सुनने से मुमुक्षुता आ जाती है, सो बात नहीं है। यथार्थ मुमुक्षुता तो मुक्ति की दृढ़ इच्छा होती है, पूर्णता का लक्ष्य होता है, तभी यथार्थ मुमुक्षुता का प्रारंभ होता है, ऐसे गुरुदेव कहते हैं। यहां से फिर आगे बढ़ना होता है। तो मुमुक्षु देखिए, अपन क्या करते हैं, अपनापन है कि नहीं है, शरीर में अपनापन है कि नहीं है, असात आती हो तो पता चल जाता है कि मुझे दर्द हुआ। बुद्धि छोड़नी है पहले, अपनापन का परिणाम सिर्फ हमको सिर्फ अपनापन नहीं पकड़ना है, अभिप्राय को पकड़ना है, परिवार में अपनापन है कि नहीं है, अपनापन की बुद्धि अभिप्राय है कि नहीं है, हम हमारे परिवार के सदस्य को किस नजर से देखते हैं। हाँ, बहुत से लोग बैठे हैं इधर, परिवार वाले बीच में होते हैं कि नहीं होते हैं? बिना नजर दिए, बिना उपयोग लगाए मेरे वाले भी बैठे हैं, उसकी समानता है कि नहीं है, हैं? अगर देखा जाएगा तो एक साथ दो चार व्यक्ति दिखने में आएगी, फिर भी ये मेरे हैं, इसका विकल्प नहीं करना पड़ेगा। निर्विकल्प रूप से ज्ञान काम करेगा, परिणति काम करेगी, ये मेरे हैं। क्या कारण है? अभिप्राय में अपनापन है। यहां आचार्य महाराज कहते हैं कि जब तक ऐसा अभिप्राय है तब तक ज्ञान दिशा आने वाली नहीं है। मतलब यह हुआ कि ज्ञान दिशा में आने का अवरोध है, जिस बात का, जिस परिणमन का, जिस अभिप्राय का, वही हमारी समझ में नहीं हो, ज्ञान दिशा आने की हम अपेक्षा रखें, बिल्कुल भ्रांतिगत अपेक्षा है, कभी ये काम होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ स्वाध्याय में तो रोजाना ही चर्चा चलती है कि देखो हमारे परिवार पे आज अपनापन की बुद्धि से कैसे कैसे परिणाम चले, जैसे कोई बीमार होता है हमें चिंता हो जाती है, कोई अच्छा कार्य करता है हमें राजी खुशी हो जाती है, कहीं न किसी प्रकार से जो अभिप्राय में अपनापन है इसके परिणाम चलते ही रहते हैं। द्रव कर्म और भाव कर्म के परिणाम तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन ये लोक कर्म तो बहुत स्थूल है। लोक कर्म तो बहुत स्थूल है, हमारे कुटुंब परिवार रिश्तेदारी में प्रसंग आते हैं, शादी के विवाह के अनेक प्रकार के कौटुंबिक प्रसंग आते हैं, हमें उपस्थित रहना चाहिए। क्यों? कि हमारा कुटुंब है, अगर नहीं रहेंगे तो इसकी नजर में हम गिर जाएंगे। हम बात बात में हमारा अपनापन का अभिप्राय को दृढ़ कर लेते हैं, दृढ़ करते जाते हैं। जी देखिए, यहाँ तो संसार से मुक्त होने वाले जीव का परिणाम कैसे होते हैं? जब किसी जीव ऐसा निर्णय करता है कि मुझे मुक्त होना ही है, मुक्ति है ये कोई सामान्य उपलब्धि तो नहीं है, प्लस माइनस दो का काउंटिंग करें, गिनती करें, तो अनंत दुख का अभाव और अनंत सुख की प्राप्ति है, किसी का नाम मुक्ति है। सामान्य बात तो नहीं है। जब इतनी बड़ी चीज आप लेने को जा रहे हैं, किस कीमत पे लेनी है आपको बताइए हमको? आपको सब्जी तरकारी के भाव में सोना खरीदना है तो मिलेगा क्या? संसार में भी नहीं मिलता। चांदी लेने के लिए चांदी के भाव, सोना लेने के लिए सोने के भाव, और हीरा लेने के लिए हीरे के भाव देने पड़ते हैं। अब हमको मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए मैंने दुख नहीं चाहिए, तनिक भी थोड़ा भी दुख थोड़े काल के लिए कोई जीव नहीं चाहता। कोई जीव चाहता है? नहीं चाहता है। इसी का नाम मुक्ति है अव्यक्त रूप से। लेकिन सही रास्ता तो पकड़ना पड़ेगा, उपाय तो सही होना चाहिए। हम गलत उपाय करते रहे और मुक्ति चाहे या सुख चाहे दुख नहीं चाहे, कैसे बनने वाला है? तो जब इतनी बड़ी उपलब्धि हमें होनी चाहिए, इसके लिए हमारे अभिप्राय में कितनी तैयारी है कि किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे हमें ये काम करना चाहिए। जहां तक उतनी अभिप्राय में तैयारी नहीं होगी, हम इस मार्ग में प्रवेश करने के अभिप्राय में नहीं है, और हमारा संसार की उपासना करने का अभिप्राय है तो वैसा का वैसा चालू है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी को बुरा भी लग सकता है, हो सकता है। हमें इस वक्त हमारे आत्मकल्याण के भाव में रहना चाहिए। हम आत्मकल्याण भी नहीं करें और हम व्यवहार में भी गड़बड़ करें तो ये व्यवहार है, लौकिक व्यवहार है। लौकिक व्यवहार में नहीं रहने का अधिकार किसको है? तो न्याय संपन्न बात होनी चाहिए कि जो अपना आत्मकल्याण कर रहा है और लौकिक व्यवहार में आउट हो जाता है, व्यवहार बाहर जिसको कहने को, व्यवहार में नहीं है वो, ये व्यक्ति व्यवहार में नहीं है रहती है, तो उनके लिए वो क्षम्य है, उसके लिए वो अपराध नहीं। लेकिन आत्मकल्याण भी नहीं करें और आडंबर करें कि हमको नहीं जाना है, हम नहीं जाएंगे, ये बात तो नहीं चलेगी। संतुलन तो बनाना पड़ेगा, बहुत सी बातें हैं। इसलिए हर प्रसंग में हमें कैसा चलना चाहिए इसकी गहरी चर्चा, लंबी चौड़ी चर्चा हमारे यहाँ चलती है। इस प्रसंग में कैसा करें, इस प्रसंग में कैसा करें, इस प्रसंग में कैसा करें, और हम क्या करते हैं, हम क्या नहीं करते हैं, तभी मुमुक्षुता यथार्थ रहेगी, जो ज्ञान दशा का कारण खुद बनेगी। अब मुमुक्षुता का ही ठिकाना नहीं होगा, ज्ञान दशा की अपेक्षा रखना तो बेकार की बात होती है। इसलिए इसकी चर्चा परिचर्चा लंबी थोड़ी होनी ही चाहिए।
लेकिन भाई जी, मैं तो बना बनाया हूँ, बनना तो है नहीं।
ये एक अपेक्षा से बात है, सर्वथा ऐसा नहीं है, किसी नए के बल से ऐसा है। क्या आया? किसी नहीं, मैंने शुद्ध नहीं के बल से, निश्चय नहीं के बल से ऐसा है। कहने वाले मुनिराज इस नए में खड़े होकर के बात करते हैं, और हम इस नए में खड़े नहीं है और हमारे में लागू कर देते हैं। खड़ा कर रहे हैं तो आपको धन्यवाद है, अगर खड़ा कर रहे हैं तो धन्यवाद है, और फिर भी खड़ा नहीं कर रहे हैं और मान लेते हैं कि खड़ा कर रहे हैं,
ये अपना अपराध है,
तो ये अपना अपराध बन जाएगा। जिस बात की जो मर्यादा है, और हमारी भूमिका में हमको खड़ा रहना, वो इस विषय में कैसे यथार्थ है, कहाँ तक यथार्थ है, किस भूमिका में ये यथार्थता आती है, इसका तो हमें कोई भान नहीं है, और हम विकल्प करते रहे, बोलते जाते रहे, तो ये साधना तो नहीं होगी, विराधना अवश्य हो जाएगी।
सर्वप्रथम यही बताया कि भगवान सबको माना, भगवान सबको कहा, चाहे वो कैसा भी हो, सबसे पहले भगवान ही कहा।
वो तो गुरुदेव, तो गुरुदेव इस नये में खड़े थे
और सबको खड़ा करना था,
और सबको खड़ा करना भी था, लेकिन यथार्थ विधि से, ये यथार्थ विधि से नहीं, और इस विधि का हमको पता नहीं है, तो हमारी जैसे करुणाजनक स्थिति किसी और की नहीं है, ऐसा ऐसा समझना चाहिए।
पता करने के लिए शक्ति आएंगे, पता करने के लिए है? पता करने के लिए पहले शक्ति आएंगी,
पता करने के लिए भले ही शब्द आए, हमें तो कोई बात का आग्रह नहीं है। अगर सही विधि से किसी भी जीव आत्म कल्याण के मार्ग में आता है तो वो हमारे लिए तो आदरणीय है, इसमें कोई पक्ष विपक्ष की चर्चा नहीं है। बात वो है कि अनंत काल में ऐसी ऐसी बातों में हमारी गलती अनंत बार हुई है, इस वक्त कहीं नहीं हो जाए, इसकी पूरी पूरी सावधानी हमारी होनी चाहिए। और इस विषय में जितनी भी प्रतिपक्ष की बात आए, अपने को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और दरकार हमारी होनी चाहिए कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं होता है, कहीं ऐसा तो नहीं होता है, कहीं ऐसा तो नहीं होता है, हमारे में कोई ऐसा नहीं होता है। अगर स्वलक्ष्य रहा तो, अगर स्वलक्ष्य नहीं रहा तो परलक्ष्य इसकी उपेक्षा हो जाया करेगी, करनी नहीं पड़ेगी, और हम मानने लगे कि हम सही रास्ते पे हैं। लेकिन सही रास्ते पे होते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत कम टाइम में आता है। ये एक ऐसा रसायन है, निश्चय नय का पक्ष जिसको बोला जाता है, निश्चय नय का पक्ष दो प्रकार का है, अयथार्थ भी है और यथार्थ भी है। भावभाषण के पहले वो अयथार्थ रहता है, और भावभाषण के बाद वो यथार्थता में आता है। कैसे यथार्थता में आता है, गुरुदेव ने बहुत बहुत चर्चा की है इस विषय में। वो कहते थे कि भावभाषण के बाद जब कोई मुमुक्षु निश्चय नक्ष नय के पक्ष में आता है तो पक्ष में बहुत दक्ष होता है। क्या कहते थे, नट पक्ष में बहुत दक्ष, मैंने बहुत चतुर, बहुत सावधान होता है, कि ये भी मेरा एक पक्ष है, और एक पक्ष को छोड़ करके, अतिक्रांत होकर के मुझे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करना चाहिए। तो इसकी बहुत बड़ी लंबी चर्चा वो करते थे। ऐसी हमारी स्थिति हमें आत्मा को टटोल करके देख लेनी चाहिए, और जिसको यथार्थ निश्चय नहीं का पक्ष आता है उनको साल दो साल चार साल पांच साल पच्चीस साल नहीं लगती, उसका काम कुछ दिनों में होता है या दो चार छह महीने में, मैक्सिमम छह महीना बताया है आचार्य ने। कितने बहुत मंद पुरुषार्थ हो तो, सामान्य मंद पुरुषार्थ वाले को दो तीन महीना, बहुत मंद वाले को छह महीना, और तीव्र पुरुषार्थ वाले को कुछ दिनों में या कुछ घंटों में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। अगर छह महीने से ज्यादा समय निकल गया, समझ लेना कि हमारा निश्चय नए वाला पक्ष जो है उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है ही, ये इसका संकेत है, इसकी निशानी है, इसका स्वरूप है। तो ये बात जो है बहुत ठोस है, इस भूमिका में जो पुरुषार्थ उठता है और जो पुरुषार्थ बढ़ता है और उस पुरुषार्थ के पराक्रम से, अद्भुत पराक्रम से परमात्मा प्रकट होता है, कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा एक खिंचाव है उसको पक्ष का, खिंचाव को वहां पक्ष का, और समय सार के 143 गाथा के आगे क्या बोला कि ये पक्ष हो गया तो क्या हो गया, तेथी सुं, हमारे गुजराती में आया हुआ देव तेथी सुं, इससे क्या, क्योंकि इसको इसकी गिनती होती नहीं है। यथार्थ भूमिका वाले को इसकी गिनती नहीं होती, उनको तो परमात्मा चाहिए, पर इसके पीछे वो लग गया है, उसकी लगन लगी है, उसकी लय लगी है, उसकी तड़पन हो गई है, उसकी छटपटाहट है, तो उसको कहीं रहने नहीं देती, चैन लेने नहीं देती। वो बात गुरुदेव श्री ने परमागम सार में कही है, निकालिए, यथार्थ विधि के विषय में तो बहुत सी बातें कही है उन्होंने। तो 90 नंबर का वचनामृत है, पृष्ठ संख्या 38 है। जैसे सिंह को चारों ओर घूमते देखकर नींद नहीं आती, मारने के लिए हथियारबंद पुलिस को घूमते देख नींद नहीं आती, वैसे ही जब तक तत्व निर्णय नहीं हो, भाव वासन नहीं हो, तब तक जीव को सुख की नींद नहीं आती। निर्णय पहले की बात है, अनुभव पहले तो निर्णय, और निर्णय पहले की बात है। हमको मिलान करना पड़ेगा कि क्या तत्व निर्णय के लिए हमारी इतनी बेचैनी हुई क्या, कि न हमको खाना सुहाया, न हमारे नींद के काल में नींद आई। अगर तो नींद के काल बिना नींद आ जाती, नींद के काल में नींद नहीं आती है, तो ये बात है। तो ऐसे बेचैनी होती है तब तो निर्णय होता है। ऐसा नहीं है कि विचार करके निर्णय कर लिया इसका नाम निर्णय है, निर्णय तो भाव वासन होता है, अनुभवांश से प्रतीति। 751 पत्र में जो दूसरा संकेत कहा है उसकी परिभाषा ऐसी की है श्रीमद जी ने, परमार्थ की अनुभवांश से प्रतीति, इसको हम दूसरा संकेत कहते हैं। ये सम्यक्त्व का अनन्य कारण होने से, अंगभूत कारण होने से, इसलिए कि उसको परमार्थ संकेत आये बिना रहता नहीं है, अल्पकाल में आता है, आये बिना रहता नहीं, अल्पकाल में आता ही है। तो ऐसी ऐसी दशा होती है, और ये दशा होती है वो शास्त्र में पढ़ करके गुरुदेव ने नहीं बोला है, खुद की ये दशा हुई है तब बोला है, वो भी एक काल में मुमुक्षु थे, ज्ञानी तो बाद में बने हैं, और इसकी मुमुक्षु की भूमिका में उसकी वो दशा बनी। तब उन्होंने कहा कि हम जब तत्व का निर्णय करने को गए तो हमारे ये हालात हुई थी, अब आप मिलान करो कि आपके ऐसी हालात कभी हुई या इसके पहले आपने तत्व निर्णय कर लिया क्या हुआ देख लेना चाहिए। ऐसी ऐसी तो बहुत सी बातें हैं, ये तो स्मरण में आते बता देते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं। और श्रीमद जी ने तो योजनाबद्ध ये बात की है, कितने कैसी कि ज्ञान मार्ग में प्रवेश होना है, इसकी एक व्यवस्था है, इसकी एक योजना है, और ये अनुभव सिद्ध है। कैसी है? अनुभव सिद्ध है। इस अनुभव पद्धति से अनुभव सिद्ध बात को हम उपेक्षा करके चले हैं तभी हमारा काम होने वाला नहीं है। एक छोटा सा काम में भी इसकी पद्धति होती है। लकड़ी में एक स्क्रू फिट हो गया है, हमको निकालने की जरूरत पड़ी, हम भले ही पहलवान जैसे तगड़े हो, खींचो अंगुली से, उंगली को पकड़ सके उतना बाहर है, मान लो उंगली से पकड़ सके इतना बाहर है, और हमारा ताकत भी बहुत है, खींच लो, इसके घिसी आटे में लकड़ी के परमाणु कितने हैं? कितने होंगे? एक रत्ती भार भी नहीं होगी। ताकत कितनी है कि आपकी ताकत काम में नहीं आए उतनी? आप सारे दिन खींचे करो, नहीं निकलेगा, और ज्यादा जोर करेंगे तो उंगली में खून निकल जाएगा, स्क्रू बार नहीं निकलेगा। लेकिन स्क्रू ड्राइवर से डिसमिस से सेकंडों में उसको बाहर लिया लाया जाता है। छोटे से छोटे काम में कार्य पद्धति अनिवार्य है, तो ये तो पूरा संसार तीरना है हमको। अनंत काल में हमने सम्यक दर्शन तो नहीं पाया, पर पाया तो इधर होते नहीं, तुम नहीं पाया, इतना बड़ी एक बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है, तो इसकी पद्धति क्या है?
36 नंबर के लिए सर, है 36 नंबर, 129 नंबर,
तो 36 नंबर, तो इस पद्धति पर हमारा अगर ध्यान नहीं गया कि किस पद्धति से हमें काम करना है तो हमारी दरकार भी नहीं है, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। पहले ध्यान हो जाना चाहिए कि इसमें पद्धति क्या है, हमें पद्धति से चलना है, ऐसे नहीं चलना है। क्यों कि ज्ञानियों के अनेक प्रकार के वचन जगह जगह हैं, किस भूमिका में यह लागू होता है ये पद्धति के विषय बिना समझ में नहीं आते, और हम तो ठीक हमारे मन में आए ऐसे लागू कर देते हैं कि देखो इधर वो लिखा है, इधर वो लिखा है, इधर वो लिखा है, कुछ कोई मतलब की बात नहीं है, ये कोई मतलब की बात नहीं है। तो सबों को ऐसा ही हुआ है, तीर्थंकर के समोसरण में दिव्य ध्वनि सुनकर में हमने यही धंधा किया है कि देखो ये हमारी बात आई, फिर हमारा अभिप्राय विरुद्ध आई तो हमने उपेक्षा कर डाली, हमने सुनी नहीं, सुनी अनसुनी कर दी, पर जब हमारी आई हमारे पक्ष देखो हमारी बात आई, ऐसे शास्त्र में देखो हमारी बात इधर है, देखो हमारी बात इधर है, अरे क्या कर रहे हैं आप?
विपरीतता है क्या?
हाँ, पूरी पूरी अधूरी नहीं है ये, ये पूरी विपरीतता इसलिए है कि हमें दूसरी बात की उपेक्षा करते हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नहीं, वितरकता की बात है, लेकिन हमारे लिए वो विपरीत इसलिए हो जाती है कि इसमें जो क्षति रहती है वो हम सुनना नहीं चाहते, वो हम ध्यान में लेना नहीं चाहते,
दोनों बात जानना चाहते,
इसलिए ये हमारे लिए विपरीत हो जाएंगे। गुरुदेव कहते थे बहुत सुनने लायक बात है कि ये कच्चा पारा है, क्या है? कच्चा पारा है, निश्चय की बात मामूली नहीं है, कच्चा पारा है, यथार्थ रूप से खाया नहीं जाएगा बहुत बड़ा रोग हो जाएगा, निकालना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सी बातें की है गुरुदेव, ऐसा नहीं बात की है, एक निश्चय की बात किया है, सब कोई मानते हैं कि गांधी स्वामी ने अकेले निश्चय की बात की है, ऐसी बात नहीं है। व्यवहार की बात तो इतनी जोर से की है, इतनी जोर से की है, आप पढ़िए, हमने तो सब सुन सुन के इधर जो जीव राग के अवलंबन बिना शुद्ध त्रिकाली वस्तु का
ये वाला
अच्छा 129 नंबर पेज 26 अच्छा। अरे भाई तेरे जैसा कोई धनाढ्य नहीं है, तुम्हारे अंतर में परमात्मा विराजते हैं, इससे अधिक धनाढ्य बना अन्य क्या हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे अपने परमात्मा स्वरूप की बात सुनते ही तुझे अंतर से उल्लास उछलना चाहिए। तो जब दरिद्र को आता है कि नहीं उल्लास कि मेरे घर में संपत्ति पड़ी, ऐसा उल्लास आना चाहिए। इसकी वो तो बात कर रही थी, उल्लास बहुत आना चाहिए, इसकी लगन लगनी चाहिए। क्या होना चाहिए? लगन लगनी चाहिए। ये बात रही फीलिंग स्टेज की कि हमें लगन कैसी लगी है इसके लिए। इसके पीछे पागल हो जाना चाहिए क्या? इसके पीछे पागल हो जाना चाहिए। किसी की भी गिनती नहीं करे, हमको वो चाहिए चाहिए और चाहिए। इसका मतलब वो नहीं है कि यथार्थ विधि से भी चाहिए, ये मतलब इसका नहीं होता है। इसका मतलब ये गर्भित है कि यथार्थ विधि से हमें चाहिए। सभी ज्ञानियों ने, अनंत ज्ञानियों ने एक ही मार्ग से पाया है। दूसरा मार्ग तो वो मार्ग कौन सा, ये बात हमारा इस बात पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। तब तो हमारी लगन सही है, तब तो हमारा पागलपन भी सही है। पागलपन भी दो तरह का होता है, यथार्थ पागल होता है ज्ञानी बन जाता है, पर यथार्थ पागल हो जाता है स्वच्छंदी हो जाता है, ये बात बन जाती है। तो हमको तो ध्यान रखना पड़ेगा कि हम यथार्थता में तो नहीं आए कुछ। ऐसे परमात्मा स्वरूप की धुन लगनी चाहिए, और वो धुन भाव भाषण के बिना किसी को लगती नहीं है। धुन में आते हैं उसको अनुभव होता है, बिना धुन अनुभव में आते नहीं, और ये धुन भाव भाषण के बिना किसी को होती नहीं। सच्ची धुन लगे तो जो अंतर स्वरूप है वह प्रकट हुए बिना कैसे रहे, ये धुन से ही प्रकट होता है। धुन रे दुनिया अपनी धुन, जिसके धुन में नहीं पाप और पुण्य, अवश्य ही प्रकट हो। एक समय की वर्तमान हलचल वाले परिणमनशील पर्याय के पीछे प्रभु स्वयं विराजमान है, परंतु पुण्य पाप के वो देखने के चक्कर में उसके पीछे विराजमान भगवान को तू नहीं देखते हैं। पुण्यमय और पाप में तेरा एकत्र रूप से जो परिणमन होता है पुण्य पाप में, शुभ अशुभ के सिवा तुमको पता ही नहीं है कि ज्ञान क्या होता है, श्रद्धान क्या होता है। वर्तमान में शुभ अशुभ हो रहा है, इसके पीछे तेरा बात चलता है, तुमको परमात्मा दिखने वाला नहीं है। तो बात तो सभी प्रकार की होती है, इसका कोऑर्डिनेशन हमने किया कि नहीं किया। हाँ, इसका क्या है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। हाँ, सबसे प्रथम कदम कहाँ रखना
है,
टाइम तो हो चुका है भैया, 61 नंबर है रचनामृत का। शुभाशुभ के विकल्पों से, रागादि भावों से, अथवा द्रव्यों के भेद रूप विचार से तुझे क्या लाभ है? ऐसे विकल्पों का सावधानी पूर्वक प्रतिपालन अर्थात आचरण व स्मरण से तुझे कार्य सिद्धि होती है कि कार्य सिद्धि कोई नहीं होती? एक और भगवान आत्मा का अनुभव है, पर दूसरी ओर भेद विकल्प आदि है। एक पूरा भेद अनुभव है, दूसरी ओर भेद विकल्प है। परंतु तुझे इस दूसरे पक्ष से क्या प्रयोजन है? तुझे तो तेरा अनुभव से प्रयोजन है, विचारों से प्रयोजन नहीं है, विकल्पों से प्रयोजन नहीं है। जिस अभेद चैतन्य स्वभाव का अनुभव हुआ उसे दया दान आदि विकल्पों से क्या सिद्धि है? कि कुछ सिद्धि, विकल्पों से कुछ सिद्धि नहीं है। विकल्प करते करते निर्विकल्प हो जाएंगे, वो बात बनने वाली कभी नहीं है, उसका निषेध है यहाँ पर, क्योंकि यह स्वभाव रूप है। अरे ये द्रव्यगुण पर्याय के भेद विकल्पों से, आत्मा के भेद विकल्पों से भी क्या प्रयोजन है? उस और की सावधानी को तो विकल्प मात्र का उसमें निषेध किया, वो विकल्प में दुख लगे बिना निषेध सही रूप से यथार्थ रूप से आएगा नहीं। तो हमको दुख लगा कि नहीं लगा? फीलिंग स्टेज में देखो, ये इसके प्रैक्टिकल साइड है कि विकल्प हमारा चलता है, हमको दुख लगता है क्या? तभी तो हम यथार्थ लाइन में है। पर विकल्प चलता है और हम लेते हैं कि चलो अच्छे विकल्प करते हैं, यही विकल्प करते रहे तो क्या होगा? अभी विकल्प का अंत होने वाला है नहीं, और निर्विकल्प अनुभव की चाह भी इसमें नहीं है, ये बात होती है। हाँ, उसका भी, इसका भी निषेध किया, उसमें भी दुख लगना चाहिए, तभी तो निर्विकल्प होगा। और वो आगे की स्टेज की बात होती है, हमने को तो क्रम से स्टेज वाइज आगे बढ़ना पड़ेगा और तभी हमारा काम होगा। हाँ जी।